તારીખ 24/3/1993 શ્રી સમયસર કળશ 143 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 365
શંકર દેવ કા છ જીવની કા એક અધ્યયન કા એક વચનામૃત ઉદ્ધરણ ક્યા હૈ ઇસકે બાદ ઇસ પત્ર મેં धर्म के इस मुख्य तीन साधन तीन मार्ग से जो अपनाया जाता है उस विषय में जीव को भूल होती है तो वो परिभ्रमण छूटने के बजाय उल्टा परिभ्रमण वृद्धि का हेतु तो होता है। धर्म के क्षेत्र में कितने जीव ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कितने जीव क्रिया मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कोई क्रिया मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तीन प्रकार के जो परिणाम हैं तो परिणाम में यथार्थता नहीं होती है। जब तो परिभ्रमण मिटने के बजाय, धर्म तो परिभ्रमण मिटने के लिए है, परिभ्रमण मिटने के बजाय परिभ्रमण वृद्धि का हेतु तो होता है, ऐसा स्पष्टीकरण देकर यहाँ मुमुक्षु जीव को कृपालु देव ने बचाया है।
जी
पहले एक वचनामृत का तीर्थंकर देव का उदाहरण दिया है, जिसको मृत्यु के साथ मित्रता हो अथवा जिसे जो मृत्यु से भाग करके छूट सकता हो अथवा मैं ही मरूंगा ही नहीं कभी, ऐसा जिसको निश्चय हो, वे भले सुख से सो जाए। क्या जो लोग आराम से खाते हैं पीते हैं और फिर सो जाते हैं, उनको तीर्थंकर देव ने जागृत किया है। देखो, हमको कोई प्रतिकूलता नहीं है, खाने में पीने में सोने में हमारे पास सब प्रकार की सुविधा है, इतने पैसे हैं कि हम आराम से खा पी करके सो जाते हैं, भूख भी लगती है, खाना हजम भी होता है, आती है, और सोने के लिए पलंग आदि सब अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी हमने बना रखी है। उनको जागृत किया है, प्रेरणा की है कि क्या मृत्यु तुम्हारा मित्र है तो कोई बात नहीं, अगर मृत्यु तुम्हारा मित्र होता तो ठीक है, वो तुमको परेशान नहीं करेगा, तुमको मारेगा नहीं। दुश्मन मारता है, मित्र थोड़ी ना मारता है। अगर मृत्यु मित्र हो तो तुम सो जाना, अगर मृत्यु से तुम कहीं भग करके और जगह चला जा सके, तुमको मृत्यु पहुंच ही नहीं सके, ऐसा कोई स्थान तुमने ढूंढ लिया हो कि वहां जाएंगे तो मृत्यु नहीं आएगी, तो भी सो जाना अभी। और मैं कभी मरूंगा या नहीं, ये बात निश्चित है कि मैं तो मरने वाला नहीं, दुनिया के लोग मरेंगे, मशान जाना होगा दूसरे के लिए, हम तो नहीं मरेंगे, ऐसा पक्का निश्चय हो मैंने, ऐसी खात्री हो, प्रतीति हो, विश्वास हो कि मैं मरने वाला नहीं हूं, तो फिर तुम सो जाना, वरना सोना मत। ये मृत्यु की जो समस्या है, कोई एक मृत्यु भी तुझे मंजूर नहीं है, अरे मृत्यु की बात भी तुझे मंजूर नहीं है, मृत्यु तो मंजूर नहीं है लेकिन मृत्यु की चर्चा भी तू करना नहीं चाहता है। ऐसा अनंत मृत्यु आने वाला है, एक नहीं आने वाला है, अनंत मृत्यु आने वाला है
जी।
ये परिभ्रमण की चिंता अगर तुझे नहीं हुई और वैसे ही खा पी के सो जाता है तो तीर्थंकर देव कहते हैं कि ये अविचारीपना है। क्या है? तू चाहे अपने को कितना भी बुद्धिमान समझता हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान मानता हो, लेकिन भगवान तुझे कहते हैं कि ये अविचारी जीव है जो अपने आने वाले अनंत जन्म मरण की कभी चिंता करता नहीं है। ये श्री तीर्थंकर देव का वचनामृत छ जीवनी का अध्ययन से कृपालु देव ने यहाँ उद्धरण किया है। अब पत्र का विषय प्रारंभ करते हैं कि ज्ञान मार्ग दुराराध्य है। ज्ञान मार्ग आसान नहीं है। ज्ञान ज्ञानार्जन करके शास्त्र में से, ग्रंथ में से, प्रवचन सुनकर के, चर्चा आदि करके सभी ज्ञानार्जन का बाह्य प्रकार है। सत्संग करना, प्रवचन सुनना, आगम को पढ़ना, अध्ययन करना, उस विषय में चर्चा करना, ये सब ज्ञान प्राप्ति की क्रिया है। ये मार्ग दुराराध्य है, दुष्करता से, कठिनता से उसका आराधन होता है, वो उतने आसान बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि उस मार्ग से पढ़ने का बहुत स्थानक है, गिरने का बहुत स्थानक है, चढ़ने के बजाय गिरने का बहुत स्थानक है। क्यों? कि थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त होता है, जीव को अहम भाव आए बिना नहीं रहता। मैं भी समझता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है, मैं भी जानता हूँ, ये आए बिना नहीं रहता। बहुत स्थान है, इसके सिवा भी बहुत स्थान है। वो कहेंगे कब? कि परम अवगाढ़ दशा को प्राप्त होने के पहले अगर कोई ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए वो सलामत मार्ग नहीं है। गिर जाएगा वो, चढ़ने के बजाय पड़ जाएगा, या तो उसको परिभ्रमण मिटने के बजाय परिभ्रमण की वृद्धि हो जाएगी, ये बात हो जाएगी। मैंने बहुत जुम्मेवारी का काम है। ज्ञान मार्ग उत्कृष्ट मार्ग अवश्य है, बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन उसमें जुम्मेवारी भी ज्यादा है, बहुत जुम्मेवारी है उसमें। जैसे हम जैन कुल में आए, उसमें भी हम दिगंबर शास्त्रों का, ज्ञानियों का, वचनों का अध्ययन करते हैं, तो समझने में अगर हमारा विभ्रम होता है, कहने चाहते हैं कुछ और समझते हैं हम कुछ और, हम हमारे मति दोष के कारण से कोई कल्पना बना लेते हैं और वो भी प्रयोजनभूत विषय में कल्पना करते हैं, तब हम अग्रहित मिथ्यात्व में से ग्रहित मिथ्यात्व में चले जाते हैं, नुकसान कर दिया। अग्रहित तो अनादि से है, देहात्म बुद्धि आदि अग्रहित तो अनादि से है, लेकिन मार्ग प्राप्ति की जो विधि है, कार्य पद्धति है, उसमें भी भ्रम होता है, या हम मनमानी हमारी कार्य पद्धति को पसंद कर लेते हैं, या हम स्वरूप के विषय में काल्पनिक निर्णय कर लेते हैं, कल्पना से निर्णय करते हैं कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जबकि आत्मा कल्पना में आने योग्य नहीं है। कोई ये कहेंगे कि हम तो शास्त्र पढ़ करके जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझते हैं, आगम अनुसार जीव के द्रवगुण पर्याय को समझते हैं आगम अनुसार, और उत्पाद वे ध्रुव गुण गुणी भेद आदि कई बातों को हम समझते हैं, तो इसमें क्या अनुचित है? शास्त्र में जो बात आती है जीव पदार्थ की, वो व्याख्या के रूप में आती है। ठीक है, शास्त्र में जो कथन आता है जीव संबंधित, वो परिभाषा के रूप में, थियरी के रूप में आता है, जबकि आत्मा का ज्ञान अनुभव रूप में होता है। आत्मज्ञान कैसे होता है? क्या आत्मज्ञान तो अनुभव रूप से होता है। अब जो थियरी है वो अनुभव में अगर काम में नहीं ले जाते हम, तो थियरी वाला जो ज्ञान है उसी को ही हम ज्ञान समझ लेंगे, कि हमको मालूम है कि आत्मा द्रव्य से कैसा है, क्षेत्र से कैसा है, काल से कैसा है, भाव से कैसा है। और किसी भी पदार्थ का परिज्ञान करना हो तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो जानना चाहिए, और हम शास्त्र माने अनुभवी पुरुष के वचनों से जानते हैं, अन्य मत के ग्रंथों से नहीं जानते। नव तत्व भी जैन दर्शन के ग्रंथ से जानते हैं। आत्मस्वरूप का विस्तार है वो भी हमें जिनागम से जानने को मिलता है, तो इसमें क्या अनुचित है? इसमें हम क्या करते हैं कि जो बात हम समझते हैं, हमारी समझ में आता है, उसमें हम कुछ न कुछ अनुमान लगाते हैं कि हमारा आत्मा ऐसा होना चाहिए, जबकि आगम हमारा यही कहता है कि आत्मा अनुमान का विषय नहीं है। आता है प्रवचन सार 172 गाथा, आत्मा अनुमाता नहीं, आत्मा अनुमेय नहीं, और आत्मा स्वयं अनुमान भी नहीं। तीन बोल लिया है आचार्य महाराज जी 120 बोल में से। अनुमेय मैंने अनुमान में आने योग्य, ऐसा आत्मा पदार्थ ही नहीं है, हम इसका अनुमान करके जान ले, ऐसा आत्मा नहीं है। फिर भी हम इसके प्रयोग में नहीं जाते, थियरी का प्रयोग में नहीं जाते, परिभाषा के प्रयोग में नहीं जाते, तो हम अनुमान लगा लेते हैं और निर्णय करते हैं कि हमको आत्मा का स्वरूप बराबर निश्चय हुआ है। तो वहां क्या हुआ? आत्मा का निश्चय नहीं हुआ है, आत्मा के विषय में ग्रहित मिथ्यात्व हुआ है। थोड़ी बात कठोर लगेगी लेकिन ये सत्य है, ग्रहित मिथ्यात्व हुआ है। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बुद्धि पूर्वक अन्यथा जान लेना, अन्यथा निश्चय कर लेना, बुद्धि लगा करके। हम लोग तो हैं, बुद्धिमान लोग हैं, हम तो बुद्धि लगाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ बुद्धि की पहुंच से आत्मा का निश्चय होता तो कई लोगों ने कर लिया होता, और निश्चय के फल में अनुभव भी हो जाता, लेकिन ये सिर्फ बुद्धि की पहुंच का विषय नहीं है। उसमें तो थियरी को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लगा करके, उसका प्रैक्टिकल बार बार अभ्यास करके फिर अनुभव में आना होता है। हाँ, मैं सिद्ध समान हूँ ऐसा भाव भाषण नहीं हो तो कल्पना है, भाव भाषण हो तो कल्पना नहीं है। ठीक है,
तो
भाव भाषण नहीं है तो कल्पना मत करिए। भाव भाषण हमको नहीं है तो हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमने सुना कि आत्मा तो सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, बनारसीदासी ने गाया। हमने हम विचार से बुद्धि से बात को स्वीकारते हैं, हमको उसका निषेध नहीं आता है, अस्वीकार नहीं होता है कि आत्मा सिद्ध समान नहीं है, वो बात गलत है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे
जी।
हम तो स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारे इसमें क्या भूल हो गई, ये प्रश्न आएगा। कहते हैं कि ऐसा हमको लगता है क्या, ऐसा हमने जाना, लेकिन ऐसा हमने लगा क्या कि नहीं लगा, कि हमको ऐसा लगा तो नहीं, तो फिर हमको क्या लगता है कि हम तो फलाने फलाने मानस मनुष्य है, ऐसा लगता है। तो लगता है कि हम फलाने मनुष्य है, हाँ, लेकिन बोलते हैं ऐसे कि सिद्ध समान है, हम तो विकल्प ऐसा करते हैं कि सिद्ध समान है, विचार भी करते हैं कि सिद्ध समान है, और लगता है कि मनुष्य है। तो लगने में और विचारने में अंतर रहा, इसकी वो समस्या का क्या समाधान है? हमने जाना और वैसे विकल्प से माना भी, जाना और माना, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारी तो मान्यता ऐसी है कि आत्मा सिद्ध समान है, वो मान्यता मान्यता नहीं है, ये गड़बड़ है, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो फलाना मानस है। बिना भाव भाषण वो कल्पना है, तो बात ये खड़ी हो सकती है कि अगर हम विचार से सम्मत करते हैं फिर भी हमको ऐसा मान लेना नहीं चाहिए, विचार में सम्मत करते हैं फिर भी हम सिद्ध समान है ऐसा मान लेना नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, ये प्रश्न अवश्य खड़ा हो सकता है। कि जहां तक जैसा आत्मा हमको विचार में सम्मत हुआ वैसा हमको भाव भाषण में आए नहीं, ऐसा फीलिंग में फील हुए नहीं, वहां तक हमको इस विषय में जिज्ञासा में रह करके भाव भाषण होने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उतना करना चाहिए। जब तो यथार्थ भाव भाषण होकर के अनुभव का अवसर आएगा, वरना अनुभव का अवसर नहीं आएगा, सारी जिंदगी में सिद्ध समान हूं रटन करते जाओ, रटन करते करते पागल हो जाओगे, अनुभव होगा नहीं, ऐसे कहीं होगी है, इसलिए कहता हूं बहुत रटन करे, बहुत रटन करे, मैं तो गायक 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 सिवाय दूसरा हम तो कब रटन ही नहीं है ना, हमको तो नायक को सिद्ध समान को एक ही बात है। हमारे यहाँ तो गुरुदेव ने गायक शब्द का प्रसिद्धि बहुत हुआ तो गायक करने लगे, जो भी आत्मा का कोई एक नाम तो होता है रटन करने लग जाते हैं, तो ऐसे रटन से कोई काम होता नहीं है। पोपट राम राम बोलता है लेकिन राम कौन चीज है उसको पता नहीं है, उनको तो ऐसा होगा कि मुझे कुछ खाने पीने की चीज मिलती है, मिर्च कभी मिलता है, कभी अमृत फल मिलता है, अपने जामफल कहिए से, हाँ, ऐसा कोई राम भी ऐसा ही कोई फल फूल होगा, वही बात हो जाएगी। आगम के प्रमाणिक कथन हमारे को कब प्रमाणिक हो, जब हम उसको अनुभव से प्रमाण करें तब, और अनुभव करने का पुरुषार्थ करें उसी प्रकार से वो प्रमाणित। कैसे प्रमाणित करे, दो प्रश्न है, कब प्रमाणिक हो और कैसे प्रमाणिक हो। कब के अनुभव में आए तब। अनुभव प्रमाण वही सच्चा प्रमाण है, बलवान प्रमाण है। प्रमाण पांच प्रकार का है आगम में, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, न्याय प्रमाण और तर्क प्रमाण या युक्ति प्रमाण। तर्क युक्ति की बात, युक्ति प्रमाण। और चार प्रमाण तो वो है, पांचवा प्रमाण है अनुभव प्रमाण। वो चारों प्रमाण में से अनुभव प्रमाण बलवान प्रमाण है। इसके वो चारों प्रमाण भी प्रमाण कब है कि अनुभव प्रमाण होने के बाद। इसके पहले इसकी प्रमाणिकता मानी जाती नहीं। हाँ, कथन हो जाएगा, प्रमाण नहीं हो जाएगा। वो जो विद्वान लोग जब वाद विवाद करते हैं तो आगम का प्रमाण देते हैं, लेकिन वो आगम का कथन का प्रमाण देते हैं। वो कथन है, प्रमाण तो अनुभव होवे तब होता है। इसके पहले आगम भी हमारे लिए प्रमाण कहाँ से होगा, आगम प्रमाण नहीं है हमारे लिए। क्या बात चली, परम अवगाढ़ दशा को प्राप्त होने के पहले, परम अवगाढ़ दशा की प्राप्ति के पहले उस मार्ग से मैंने ज्ञान मार्ग से पढ़ने के बहुत स्थानक है। चढ़ने का तो एक मार्ग है अवश्य, लेकिन पढ़ने के बहुत है। तो इसके पहले, ज्ञान मार्ग में आने के पहले कितनी हमारी तैयारी होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन इस वचनामृत में दिया गया है। हाँ, अगर हम जो बात जानने में आती है वही बात को हम अनुभव में लेने का प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयोग नहीं करते हैं तो वो एकांत ज्ञान मार्ग है। क्या वहां ज्ञान की एकांतता हो जाती है, जानना जानना जानना, बहुत जानना, बहुत कुछ शास्त्र पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनना, ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर लेना और खूब जानकारी, बहुत बहुत जानकारी कर लेना, वो एकांत है। क्या वो ज्ञान, ज्ञान मार्ग की एकांतता है। आएगा अपने जो आत्म जागृति है, आत्म जागृति के अभी के जो अंक है, आज कौन सी तारीख हुई, 28, तो आ जानी चाहिए। भैया बस उसमें नया उनको मिल गया ने, उसमें ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग और भक्ति मार्ग की चर्चा किया है हमने, प्रश्नोत्तरी में किया है, प्रश्नोत्तरी चली थी तो प्रश्नोत्तरी की चर्चा किया है।
सबको यूं है कि ज्ञान मार्ग में
मौजूद है, लाइए भी
है।
हाँ, शुष्क ज्ञान क्या है, अकेला हम जानने की प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाते हैं। जानने की प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो ज्ञान की शुष्कता भी आए बिना रहेगी नहीं। तो ही पतन का, अन्यथा नहीं होता। देखिए अभी क्या बात आई है। प्रश्न संख्या 9 नंबर के प्रश्न पर है ये प्रश्न है। जिज्ञासा है, एकांत ज्ञान मार्ग, एकांत क्रिया मार्ग और एकांत भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या है? तीनों में एकांत हो जाता है तो कैसे होता है? फिर से, एकांत ज्ञान मार्ग का स्वरूप क्या, एकांत क्रिया मार्ग का स्वरूप क्या? ज्यादा हो तो बहनों में दे दीजिए, नहीं? और एकांत भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या? थोड़ी एक प्रथा बहनों में बांट लीजिए। दे दो। और उस प्रकार से एकांत प्रवृत्ति में नुकसान किस प्रकार का होता है और मुमुक्षु की भूमिका में ये तीनों यथार्थ प्रकार से मेल वाले कोऑर्डिनेशन के स्थान कैसे होते, किस प्रकार से होते हैं, तीन प्रश्न किया है कि तीनों की एकांतता का स्वरूप क्या है और इस एकांत प्रवृत्ति करने से नुकसान किस किस प्रकार का होता है और मुमुक्षु की भूमिका में ऐसा एकांत नहीं हो तो यथार्थ रूप से वो किस प्रकार से होते हैं, ये तीन प्रश्न एक प्रश्न में रखा है। समाधान, एकांत ज्ञान मार्ग की प्रवृत्ति अर्थात परलक्षी शास्त्र अध्ययन, शास्त्र वांछन, परलक्षी, आत्मलक्षी नहीं, स्वलक्षी नहीं, परलक्षी, परलक्षी शास्त्र वांछन, परलक्षी श्रवण, श्रवण भी परलक्षी होता है, ऐसी प्रवृत्ति कि जिसमें आत्म कल्याण के लक्ष्य का अभाव होता है, मेरा कल्याण कैसे हो, किस प्रकार से हो, मेरे कल्याण की बात कौन सी है, ऐसा जिसमें लक्ष्य नहीं जाता। जैसे हम गुरुदेव के प्रवचन सुनते थे, एक घंटे के प्रवचन में बहुत सी बातें आती थी और गुरुदेव समष्टिगत उपदेश देते थे, जो भी गाथा चलती हो उस गाथा पर वो अपना उपदेश देते थे, वो समाज को सामने रख करके देते थे, सारी समाज सुनने को बैठती थी, व्यक्तिगत बात किसी के नहीं करते थे, समष्टिगत करते थे। जब ये समष्टिगत उपदेश श्री गुरु का चलता हो तब हमें किस तरह से ये उपदेश सुनना चाहिए, इसकी कोई पद्धति है हमारे पास? या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हम राजी हो गए, सुन सुन करके राजी हो गए, बस बात खत्म हो गया, ऐसे काम होता नहीं है। इस सारे घंटे के प्रवचन में मेरे काम की बात कौन सी आई? बहुत सी बातें आती गुरुदेव के प्रवचन में, सैकड़ों बातें आई है, हजारों बातें आई है, मेरी भूमिका में मुझे लाभ हो, मुझे काम में आ जाए, ऐसी बात कौन सी आई? वो मैंने पकड़ी कि नहीं पकड़ी, उस पर मेरा लक्ष्य गया कि नहीं गया? इस तरह से अगर हम सुनते हैं तो वो स्वलक्षी श्रवण है, वो आत्मलक्षी श्रवण है, वरना मनोरंजन की बात हो जाएगी। हमको बहुत अच्छा लगा प्रवचन गुरुदेव का, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, क्या कहाँ अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, कि मन को खुश करने की, रंजन करने की चीज नहीं है। शास्त्र सुन करके अगर हम हमारे प्रयोजन पर लक्ष्य नहीं देते तो और फिर भी राजी होते हैं, कराजी होते तो बैठते ही नहीं ने, नाराज होते तो क्यों बैठेंगे, राजी होते तो मनोरंजन हो जाएगा, ये मनोरंजन की चीज नहीं है। ठीक बात है, गुरुदेव कोई अप्रयोजन बात तो करते नहीं थे, और सारा प्रवचन ही प्रयोजन भूत था। हाँ, मेरे प्रयोजन की बात कौन सी थी, वो बात उसमें से पकड़ नहीं है। गुरुदेव हजार बात करते तो हजार बात मेरे प्रयोजन की नहीं हो सकती है। जैसे शास्त्र में बहुत सी बात आती है, और मेडिकल स्टोर में बहुत सी दवाएं होती है, क्या सब दवा पी सकते हैं हम, और पिलाई जाती है क्या? सभी प्रकार का उपदेश एक जीव को कभी लागू नहीं होता। क्या सिद्धांत क्या है? उपदेश सब प्रयोजन भूत है, लेकिन अलग अलग स्तर के अलग अलग योग्यता वाले जीव को अलग अलग बात होती है प्रयोजन की। सभी बात एक जीव के प्रयोजन की हो ही नहीं सकती कभी। कहेंगे कि ऐसी खोजने की हमारी योग्यता नहीं है तो क्या करें? तो वो श्री गुरु के चरण में चले जाएं कि आपने बहुत बात की लेकिन मेरी योग्यता वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, आकृति है वो, मैं मुझे मेरी दवाई दे दो, मुझे दूसरी दवाई से लेना देना नहीं है। ऐसा निकट में जाना पड़ेगा, श्री गुरु के समीप में जाना पड़ेगा, उसका अंतेवासी बनना पड़ेगा, तब ये माल मिलेगा, वरना तो सुन सुन के मनोरंजन कर लेंगे हम, ये ठीक नहीं है। कि वो ज्ञान मार्ग से पढ़ने का स्थान है, चढ़ने का नहीं है। वहां पढ़ जाओगे कहीं न कहीं रुक जाओगे, कहीं न कहीं गिर जाओगे। इसलिए सभी उपदेश एक जीव को लागू नहीं होता, और एक उपदेश सभी जीव को लागू नहीं होता। उपदेश का एक वचन सबको नहीं लागू होता, और सभी उपदेश एक जीव को लागू नहीं होता। ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति में से हमें हमारी चीज को कैसे लाभ हो ये ग्रहण करना है। इसलिए शास्त्र वाचन और शास्त्र श्रवण वगैरह जो प्रवृत्ति है कि जिसमें आत्मकल्याण का लक्ष्य नहीं होता, इस प्रकार से अपने प्रयोजन का ग्रहण करने का जिसका लक्ष्य नहीं है, वो एकांत ज्ञान मार्ग की प्रवृत्ति है। इसलिए स्वरूप प्राप्ति की अवगाढ़ भावना हुए बिना, यहाँ परम अवगाढ़ दशा लिखी है ना कृपालु देव ने, वही बात हमने लिया है उत्तर में। परम अवगाढ़ दशा पाने के पहले, इसका मतलब क्या कि स्वरूप प्राप्ति की अवगाढ़ भावना हुए बिना, मात्र शास्त्र ज्ञान की धारणा से आत्म कल्याण होने का भ्रम का सेवन हो जाता है। स्वरूप प्राप्ति की एकदम अवगाढ़ भावना हुए बिना अगर शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ करके इसकी धारणा कर कर करके हमका आत्म कल्याण हो जाएगा, ऐसा भ्रम हमको हो जाता है। तो ये विधि की भूल है। क्या ये विधि की भूल? ये रहित मिथ्यात हो गया। यथार्थ विधि नहीं आई तो विधि की भूल में क्या होता है, बुद्धिपूर्वक हमने नई कार्य पद्धति मनमानी की, तो उसको ग्रहित मिथ्यात होता है, और ज्ञानी पुरुष उसको स्वच्छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वो स्वच्छंद से पढ़ता है, स्वच्छंद से शास्त्र अध्ययन करता है। बड़ी गड़बड़ है, तीव्र भावना, एकमात्र भावना, आत्म कल्याण के अलावा कुछ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारा आत्म कल्याण ही चाहिए, ऐसी अवगाढ़ भावना होनी चाहिए, गाढ़ अवगाढ़। ऐसी भावना के बिना शास्त्र पढ़े तो धारणा से कई प्रकार का नुकसान हो ही जाएगा। परम अवगाढ़ मैंने बहुत अवगाढ़ भावना होनी चाहिए, परम अवगाढ़ भावना। इसके पहले शास्त्र पढ़ने का पात्रता नहीं है, अधिकारीपना नहीं है, ऐसी बात है। अगर अकेले भी शास्त्र पढ़ना हो तो आत्म कल्याण की स्वरूप प्राप्ति की अवगाढ़ भावना होनी चाहिए। नहीं, भावना का सवाल है, दशा में भावना नहीं लेना। यहाँ अवगाढ़
इच्छा,
इच्छा तो राग है, इच्छा है सो राग है, ऊपर ऊपर की इच्छा होती है, ऐसी बात नहीं है। अंतर में से भावना आनी चाहिए, आत्मा में से भावना उगनी चाहिए, वो बात है उसमें। इच्छा तो ऊपर ऊपर की होती है, जिज्ञासा ऊपर ऊपर की होती है, इच्छा ऊपर ऊपर की होती है, भावना भी ऊपर ऊपर की होती है, वो नहीं चले। ये तो अनंत बार हमने किया है, और ऐसी भावना से ऐसी इच्छा से भी हमने धर्म के साधन भी बहुत किए हैं। यम नियम संयम आप कियो, वो सब ऊपर ऊपर से ही किया है, अंतर में से कभी नहीं किया। अंतर में से अगर बात उठती है तो काम हुए बिना नहीं रहता। ये पूज्य बहन श्री का दूसरा वचनामृत इसमें लिया है अपने स्वाध्याय सुधा में। नहीं नहीं नहीं, ये भावना का विषय है, भावना का विषय है। इसमें ऐसा है कि जिसको ऐसी परम अवगाढ़ भावना पूर्वक शास्त्र का अध्ययन होता है उसको क्या होता है, वो हम प्रैक्टिकल साइड से देखें कि वो एक ही नजर उसकी हो जाएगी कि मेरे स्वरूप की प्राप्ति में वो किस तरह से काम में आता है। जो भी बात सामने आएगी उसमें एक ही नजर, एक ही लक्ष्य उसका हो जाएगा कि मेरे आत्म कल्याण में, मेरे स्वरूप की प्राप्ति में वो बात किस तरह से उसका उपयोग है, वही पहलू को वो पकड़ेगा। तो उसको कोई अन्यथा कल्पना कहीं नहीं होगी, उसको कहीं अन्यथा कल्पना नहीं होगी, तो वो बच जाएगा। वरना शास्त्र पढ़ते पढ़ते बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। या तो ज्ञानी के चरण में बैठ करके पढ़े, या तो परम अवगाढ़ दशा प्राप्त करके पढ़े। बाकी दूसरी प्रकार से पढ़ेगा उसमें गड़बड़ हो ही जाएगी। कैसी कैसी गड़बड़ हो जाएगी कि उसको भ्रम होता है कि ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरा कल्याण हो जाएगा, वो भी ग्रहित मिथ्यात है। उस प्रकार से प्रवृत्ति करने में विकल्प वृद्धि हो जाती है, विकल्प वृद्धि हो जाती है। बहुत से नई की बात है, अनेक नई से अनेक बातें हैं, तो अनेक प्रकार के विकल्प बढ़ जाएंगे। जबकि आत्मानुभव में निर्विकल्प दशा होती है, तो हमारे आत्मानुभव के लिए जो प्रवृत्ति हो, चाहे ज्ञान मार्ग की हो, हमारे विकल्प कैसे संक्षेप होकर के अभाव को प्राप्त हो जाए, ऐसी लाइन हमको पकड़नी चाहिए थी। इसके बजाय अगर हमारा विकल्प बढ़ जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी शास्त्र अध्ययन की पद्धति में गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, उसमें बात प्रश्न इस प्रकार का है, मैं दोहराता हूं कि कोई सत्पुरुष के चरण में शास्त्र अध्ययन पढ़ना चाहिए ऐसा कहा, तो वो सत्पुरुष के चरण में, ज्ञानी पुरुष के चरण में शास्त्र पढ़ने को जाएगा तो क्या ऐसी बात लेकर के जाएगा कि मेरे को साफ समय सार या प्रवचन सार या फलाना ग्रंथ हमको समझना है तो हम आपके चरण में बैठकर समझना चाहते हैं, ऐसा ऐसे ऐसी बात करने कर कर करके जाएगा या किस प्रकार की बात करेगा? वो श्री गुरु से ऐसा पूछेगा कि मैं मेरी योग्यता को नहीं जानता, क्या मैं तो मेरी योग्यता को नहीं जानता, आप मेरी योग्यता को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए वो बात नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। वो प्रश्न इसलिए उठ रहा है हेतु पूर्वक कि बहुभाग हमारे जो मुमुक्षु है वो ऐसे पूछते हैं कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़े, हमको क्या शास्त्र पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ने का निर्णय खुद ने ले लिया, अब क्या पढ़ना उसका उसका मार्गदर्शन वो लेना चाहता है, तो एक डिसीजन तो खुद ने ले लिया, पढ़ना और क्या पढ़ना दो प्रकार का डिसीजन है उसमें, उसमें एक डिसीजन लेकर के बात करता है वो भी ठीक नहीं है, उसको तो ये कहना चाहिए कि मैं कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं जानता, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं मुझे क्या पढ़ना चाहिए वो बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो पढ़ने का तो निर्णय तो कर ही लिया, तो तुमको पढ़ना है या दूसरा कुछ करना है। अन्य मत के शास्त्र में कितने दृष्टांत बहुत अच्छे आते हैं, जैसे भागवत में एक बात है कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तो सांदीपनी ऋषि के नाम के एक गुरु के पास वो विद्या के लिए पढ़ने को जाते थे। उन जमाने में राजकुमार हो कोई भी हो, जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम में उनको विद्या की प्राप्ति की जाती थी, तो वहां राजकुमार भी होते हैं और भी सामान्य जन के लोग भी, आम जनता के लड़के भी होते हैं, तो सबको जो है वो जो आश्रम में जो रसोई पकाई जाती है इसके लकड़े जला करके फिर वो रसोई पकाते हैं, उन जमाने में तो गैस वगैरह का कोई साधन नहीं था, तो लकड़ी जंगल में से जो सूखी हुई लकड़ी है वो इकट्ठी करनी पड़े, तो सब जाए इसमें राजकुमार हो तो भी वो काम करे और गरीब का कोई दरिद्री जन का लड़का हो तो वही काम करे, ऐसा ही कथा आती है। ये मतलब क्या है, इसमें उपदेश क्या मिलता है कि वो गरीब है और मैं अमीर हूं वो बात विद्या अर्जन में नहीं रहती है, इसलिए राजकुमार है उसको तो ग्रंथ पढ़ाना है और दरिद्री का लड़का उसको लकड़ी लेने को लिए भेजना जंगल में, वो बात वहां नहीं होती थी, वहां तो दोनों साथ में जाए तो इसका अहम गल जाए, भाई उसको भी लकड़ी लेना है मुझे भी लकड़ी उठा कर लाना है, उस प्रकार से काम होता है। ऐसे सत्पुरुष के चरण में, ज्ञानी के चरण में पूरा अहम छोड़ करके जाना पड़ता है, थोड़ा अहम नहीं करना है कि पुस्तक तो मुझे समय सार पढ़ना, आप हमने को समय सार समझाइए, ये बात नहीं होनी चाहिए, हमको क्या देना वो आप जानते हैं, हमको क्या लेना है वो भी हम नहीं जानते हैं, आप हमारी योग्यता देख करके जो भी आप कहेंगे हम वो ही करेंगे, ऐसा होना चाहिए तो उपदेश ग्रहण होता है वरना नहीं होता है। विकल्प वृद्धि होती है, शास्त्रीय अभिनिवेश होकर के ज्ञान का अति परिणामीपणा को भोगता है, वेदन करता है, अति परिणामीपणा वो बात लिया है, विकल्प भी लिया है, संदेह विकल्प स्वच्छंदता अति परिणामीपण वगैरह वगैरह चार प्रकार के दोष लिए और भी दोष होते हैं, उसमें पहले विकल्प वृद्धि की बात लिया है और शास्त्रीय अभिनिवेश हो जाने से ऐसा है कि द्रव्य दृष्टि प्रकट हुए बिना, सम्यक दर्शन में द्रव्य दृष्टि प्रकट हुए बिना जीव पर्याय दृष्टि है। कैसा है जीव? अनादि से पर्याय दृष्टि है। अब पहले हमारे पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था, हमने शास्त्र पढ़ा तो शास्त्र की में जो बात थी उसकी समझ आ गई हमको। हमारे ज्ञान की अवस्था में कुछ विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब उस डेवलपमेंट का अहम भाव नहीं आए इसके लिए हमारे पास कौन सा साधन है बताइए? पर्याय बुद्धि तो हम है ही, चाहे हम क्रिया करेंगे तो इसका अहम भाव आ जाएगा, भक्ति करेंगे तो इसका अहम भाव आएगा, त्याग करेंगे तो इसका अहम भाव आ जाएगा, शास्त्र पढ़ेंगे तो इसका अहम भाव आ जाएगा, जो भी हमारे धर्म साधन विषयक पर्याय बनेगी साधन करते करते। तो मैंने इतना किया, मैंने उतना दान दिया, लो ठीक। अहम भाव रोकने के लिए साधन कौन सा है? ये एक बहुत जटिल समस्या है। पर्याय का जो धर्म साधन करेंगे उसी साधन का विकास तो होने वाला है ही। अब पर्याय में कुछ ठीक होवे, शास्त्र ज्ञान नहीं था वो हुआ, पहले हम नहीं जानते थे ऐसी बातें जानने को मिली, लेकिन उस जानकारी का अहम भाव रोकने के लिए कौन सा साधन है हमारे पास? पर्याय दृष्टि होते हुए भी पहले तो द्रव्य दृष्टि सीधी तो होती नहीं, हम ज्ञान करते करते, अध्ययन करते करते, ऐसे करते 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 ज्ञान सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। पर्याय का अहम भाव होता है, इसके लिए क्या करें?
वहां से लक्ष्य हटाना, जो प्राप्त हुआ है वहां से लक्ष्य हटाना।
कैसे हटाएं बताएं, कौन कौन सा तरीका है हटाने का, तरीका कौन सा है? कहाँ डाइवर्ट करके कहाँ ले जाएं? बात तो कोई ठोस होनी चाहिए, लक्ष्य हटाना अच्छी बात है, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हटा करके हम कहाँ ले जाएंगे? इसलिए गुरुदेव श्री ने एक बहुत सुंदर हमको एक सूत्र दिया है, जबरदस्त सूत्र दिया है वो, कि तुम तो शुरुआत तुमको करनी है ने, और ऐसी शुरुआत तुम करो कि जिसमें गुण की प्राप्ति हो, कहीं भी अवगुण की प्राप्ति न हो जाए। शास्त्र भी पढ़ते हैं हम गुण प्राप्ति के लिए, कोई अवगुण प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। फिर भी अगर हमारी पद्धति सही नहीं है तो अवगुण हो जाए तो क्या करेंगे जाने अनजाने में? तो इसलिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, बढ़िया से बढ़िया वो सूत्र दिया है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करो तो वास्तविक शुरुआत होगी, वरना ये वास्तविक शुरुआत नहीं होगी। देखो इसके पर हमने तो ये मुद्रा लेख बनाया है, तो आत्म जागृति की प्रसिद्धि है, इसमें गुरुदेव के इस वचन को मुद्रा लेख बनाया है। ये गुरुदेव का ही सिर्फ वचन नहीं, अनंत ज्ञानियों का ये अभिप्राय है, शुरुआत करने वाले के लिए, तीर्थंकरों का भी यही अभिप्राय है। तो जिसको लक्ष्य पूर्णता का होगा उसको कितनी भी धारणा होगी वो तो समझेगा कि केवल ज्ञान के आगे कुछ नहीं है। ये जो बार अंग का ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान के आगे अनंतवा भागवा है। तो हमारा तो एक अंग का हजारवां भाग भी नहीं है, बार अंग की तो बात कहाँ रखे, एक अंग का लाखवां भागवा भी ज्ञान नहीं होगा। तो जिसको पूर्णता का लक्ष्य है उनको लक्ष्य हटाना नहीं पड़ेगा, उनका लक्ष्य हटा हुआ ही है। आपने कहा ना कि लक्ष्य हटाना, अरे पहले से हटा के ही हम बैठे, बाद में क्यों हटाए? हम पूर्व तैयारी करके बैठे, हटाना ना पड़े हमको, हट जाए हमारा लक्ष्य। हटा हुआ ही रहे। तो कहीं भी पूर्णता में तो अनंत गुणों की पूर्णता होती है, और कोई भी का विकास हो, चाहे ज्ञान गुण का डेवलपमेंट हो, चाहे चारित्र गुण का क्षोभसम हो, कुछ भी हो, चाहे पुरुषार्थ का क्षोभसम हो, वीरी गुण का कुछ भी हो, पर चाहे श्रद्धा मन का अनुभाग घटता हो, मुख्यत्व के अनुभाग घटता हो, दर्शन मंद होता, कुछ भी हो, अनंतता के आगे कुछ नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत ज्ञान शास्त्र का होता है वो केवल ज्ञान के आगे क्या है? केवल ज्ञान के आगे तो दिव्य ध्वनि में प्रकाशित हुआ ज्ञान अनंत महाभाग का है, और दिव्य ध्वनि में जो प्रकाशित हुआ उसमें से जो 12 अंग की रचना की ने गणधर देव ने, वो अनंतमय भाग में है। तो हमारा तो कोई जगह क्लास ही लगता नहीं है, नो रेशियो प्रोपोर्शन एट ऑल, कोई हमारा क्लास नहीं है कि इतना शास्त्र पढ़ लिया, वो कर लिया, वो कर, कुछ नहीं है वो। तो अगर शुरू से हमारा लक्ष्य वहां होगा कि हमें पूर्णता चाहिए, पूर्ण दशा चाहिए, तो हमारी दशा में कोई भी विकास होगा हमको अधूरा अधूरा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है लगेगा। पूज्य बहन श्री अपने वचनामृत में लिखती है कि मुनिराज को जो आनंद आता है वो प्रचुर मात्रा में आता है, इतनी प्रचुर मात्रा में आता है कि उनको शरीर में ऋतु का प्रकोप, ठंडी गर्मी का कोई असर नहीं पहुंचता। वो तीव्र ठंडी है, नग्न दशा में कुछ पता नहीं चलता, तीव्र गर्मी है, चमड़ी फट जाए, पता नहीं चलता है। क्यों? कि अंदर में आनंद का करंट बहुत तीव्र चलता है, प्रचुर। तो वो प्रचुर किस हिसाब से? कि संसारियों के हिसाब से और चतुर्सादी गुण स्थान के हिसाब से है वो। लेकिन मुनिराज वो नहीं देखते हैं कि वो प्रचुर आनंद आ गया हमको, मुनिराज वो देखते हैं कि मेरे में आनंद का समुद्र पड़ा है, वो पूरा का पूरा मुझे चाहिए। ये तो धीमी धार से आनंद आता है, हमको ये पोसाता नहीं है, बहुत बाकी है, हमको बहुत बाकी है। तो उस तरह से जिसका लक्ष्य पूर्णता पे होता है उनको अपनी दशा का विकास का अहम भाव आएगा नहीं भी होदी पमत्तो न अपमत्तो जान गो दूजो भावो। कुंद कुंद आचार्य ने छठी गाथा लिखी, मैं प्रमत भी नहीं ए प्रमत भी नहीं, सबके दो ही गुण स्थान में थे वो। छठा गुण स्थान को प्रमत गुण स्थान कहते हैं, सातवें गुण स्थान को अप्रमत गुण स्थान कहते हैं। और वही दशा में बैठते हुए तो वो शास्त्र लिख रहे हैं, तो कहीं हमको पर्याय का अहम भाव नहीं है, हमको पर्याय का अहम भाव है ही नहीं, न हम प्रमत है न हम अप्रमत है, हम तो एक दूसरे भाव स्वरूप है, जो हमारा ज्ञायक भाव है वही हम है। तो वहां तो ज्ञायक की दृष्टि हो गई थी, आचार्य महाराज को तो ज्ञायक की दृष्टि थी, लेकिन मुमुक्षु को तो दृष्टि है ही नहीं, वो तो सम्यक दर्शन बाकी है, वो कैसे अहम भाव नहीं करे? तो शास्त्र ज्ञान से शास्त्रीय अभिनिवेश होने की संभावना बहुत है। अगर परम अवगाढ़ दशा जो पूर्णता के लक्ष्य से पैदा होती है, ये परम अवगाढ़ दशा कहां से पैदा होती है? पूर्णता के लक्ष्य से होती है, उसके बिना उतनी परम अवगाढ़ दशा स्वरूप प्राप्ति की भावना आती नहीं है। तो उनको अहम भाव हो जाएगा, शास्त्रीय अभिनिवेश वो, तो हम शास्त्र ज्ञान का अहम भाव है वो, तो आए बिना रहेगा नहीं। समग्र रूप से निशंकता उत्पन्न नहीं होने से अनेक जगह पे संदेह की उत्पत्ति हो जाती है। क्या? समय सार पढ़ेंगे, शुरू में आएगा जीव अधिकार में, अजीव अधिकार में, कि जीव राग का कर्ता नहीं। क्या? राग है सो पुद्गल के परिणाम है, और आगे जाकर के आएगा कि राग जीव के परिणाम है। फिर आगे जाएंगे तो कहेंगे कि राग जीव के परिणाम नहीं है, वो अकर्ता स्वभाव ही है, ज्ञाता दृष्टा से। फिर कहेंगे कि वो तेरे परिणाम नहीं मानोगे तो सांख्य में चला जाएगा, सांख्य मत हो जाएगा, ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो एक शास्त्र में उल्टी सुलटी चार बातें आए, शंका पड़े बिना रहे संदेह की उत्पत्ति हो जाएगी। तो मामूली लोगों को तो ये हो जाता है कि हमारे वैज्ञानिक लोग तो चंद्र पर गए, और हमारा जिनागम ना बोलता है कि चंद्र पर मनुष्य नहीं जा सकता। बोले कि हम तो वहां फोटो खींच के आए, और पृथ्वी गोल है, वो जिनागम ना बोलता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, और पृथ्वी का फोटो आता है गोल है। चंद्र में से पृथ्वी का फोटो लिया जाता है, वो लगाते हैं ना रॉकेट में से लेते हैं, पृथ्वी तो गोल है। अब जिनागम सच्चा है या हमारा फोटो सच्चा? हाँ, जिनागम में शंका पड़े बिना रहेगी नहीं। क्या करोगे? बहुत सी बातें हैं, शास्त्र पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, शास्त्र में तो बहुत सी बातें आएगी। हाँ, माथा में वो जू पड़ती है ना, उसका जगन्य देह कितना होता है कि बिल्कुल एक तिन के जैसा, और बड़ी से बड़ी जू कितनी होती है कि एक योजन प्रमाण, कितनी? चार गांव, 6 किलोमीटर लंबी। तो किसी ने मजाक कर दिया कि इतनी बड़ी जू हमारे माथे में रह सकती नहीं। ये जैन लोगों का शास्त्र है तो जैनों के माथे में पड़ती होगी। हाँ, जैनियों के माथे में इतनी बड़ी जू हो सकती है, हमारे माथे में तो जगह ही नहीं है, 6 किलोमीटर की जू इधर रह जाए। हाँ, शंका पड़ेगी। बात तो ऐसी वैसी बहुत आती है, ऐसे शास्त्र पढ़ना आसान नहीं है, छोटी मोटी बात में शंका हो जाएगी, करोगे क्या? कि परम अवगाढ़ दशाए बिना प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत बात की बंटवारा होगा नहीं, प्रयोजन भूत बात की तीक्ष्णता आएगी नहीं, अप्रयोजन भूत बात में उलझ जाएंगे, उसकी चर्चा में चले जाएंगे, और प्रयोजन भूत बात छूट जाएगी और संदेह का कारण बनेगा। किसके प्रति संदेह किया? शास्त्र के रचयिता ऐसे निग्रंथ गुरु के प्रति हमको शंका हो जाएगी कि ये बात दो तरह की कैसी आती है, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा अशुद्ध भी है, और अशुद्धि आत्मा में से आती है और कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, कहां से अशुद्धि आई? क्या करोगे? राग की पर्याय चारित्र गुण में से आई कैसी? चारित्र गुण में तो राग करने का स्वभाव नहीं है, और राग चारित्र गुण की पर्याय है, फिर कहां से आई? निमित्त में से तो आते नहीं, ये शंका पड़े बिना रहेगी नहीं। बहुत सी बातें ऐसी है, संदेह की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जब आचार्य महाराज पर शंका उठेगी कि ये बात बराबर नहीं दिखती है, तो श्री गुरु की अभक्ति हो जाएगी। अभक्ति होने से दर्शन मोह बढ़ जाएगा, मिथ्यात तीव्र हो जाएगा। क्या करोगे?
बड़ा पाप हो गया।
अच्छा, दूसरी भी बात है कि शास्त्र तो अनेक ज्ञानियों ने रचा, अब गुरुदेव श्री तो उपादान की बात करते थे, और कृपालु देव तो निमित्त की बात करते हैं, सत्पुरुष की बात करते हैं, क्या करेंगे? हाँ, या तो शंका करो गुरुदेव पे, या तो शंका करो कृपालु देव के, किसके पर शंका करो? दो में से एक तो पर शंका जाएगी हमारी, क्या करोगे? शंका होगी, ये बात ठीक नहीं लगती है, अभक्ति हो जाएगी, और दर्शन मोह तीव्र मिथ्यात उसी वक्त लगेगा, उसी वक्त हो जाएगा। शास्त्र पढ़ना वो कोई मामूली बिंजुम्मेवारे का काम नहीं है, हायर द पोस्ट, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शास्त्र पढ़ना ये हायर पोस्ट का काम है, जिम्मेवारी भी बहुत है उसमें, परिभ्रमण वृद्धि हो जाएगी, परिभ्रमण निकालने के लिए जाओगे उल्टा निवृद्धि हो जाएगी। बिना समझे बाजार में जाके व्यापार करता है वो अपनी पूंजी को खो बैठता है। बिना समझे व्यापार करे क्या, कैसे करेगा व्यापार, बात तो पूरी समझनी पड़ेगी ना कि कमाए नहीं कमाए तो ठीक है, खोने की तो हमारे जगह नहीं है, खोना तो हमारी संपत्ति तो नहीं खोनी है हमको। तो वहां भी ऐसा बिना समझे कोई व्यापार करता है तो देवाला निकल जाता है, यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा। ये बात बचाने के लिए करते हैं। अच्छा, पहला बोल ज्ञान मार्ग का ही आया है जो हम सबों को लागू पड़ता है। हम लोग जो है शास्त्र अध्ययन करने वाले हैं, पूजा भक्ति करते हैं, कम करते हैं, लेकिन ज्यादा तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमको ये ज्यादा लागू होता है। समग्र रूप से निशंकता उत्पन्न नहीं होने से अनेक जगह पर संदेह की उत्पत्ति हो जाती है और ज्ञान की शुष्कता भी उत्पन्न हो जाती है। अगर हमें देव गुरु शास्त्र और ज्ञानी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, बहुमान नहीं है, तो ज्ञान की शुष्कता आए बिना रहेगी नहीं। या हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका अमलीकरण में नहीं जाएंगे तो भी ज्ञान की शुष्कता आए बिना नहीं रहेगी। हम पढ़े क्यों, पढ़ने की खातिर पढ़े या इसका कोई सदुपयोग करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात हमको पहले से लक्ष्मा होनी चाहिए। सुनते ही चोट लगनी चाहिए और सुनते ही प्रयोग चालू हो जाना चाहिए। ज्ञान की शुष्कता उत्पन्न होती होने के कारण से उन्मत्त प्रलाप दशा बकवास चालू हो जाता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता, गुरु हमारा कुछ नहीं करता, निमित्त हमारा कुछ नहीं करता, भगवान से कुछ लाभ नहीं होता, भगवान के माने से लाभ नहीं होता, उन्मत्त प्रलाप दशा भी आ जाएगी, वगैरह वगैरह प्रकार से आत्म कल्याण